SBS हिंदी।
जनरल वर्मा, ये बताइए कि लोकसभा में ये विधेयक पारित हो गया है जिसके तहत अब NRIs जो हैं वो प्रॉक्सी वोटिंग कर पाएंगे, तो पहले तो हमें इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो बताएं।
आई वुड से प्रिंसिपल में तो ठीक है कि इससे वोटर की तादाद तो बढ़ेगी। जैसे कहते हैं कि लगभग 3 करोड़ NRIs इंडिया के हैं दूसरे देशों में, तो अगर सारे भी नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ अगर 50% भी करेंगे तो वोटर की तादाद तो बढ़ेगी, तो उस हिसाब से ठीक है। और दूसरा ये है कि ये 2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमिटी गठन किया था, जिसने फिर कुछ रिकमेंडेशन दी थी, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को सबमिट किया गया था, और फिर उसके ऊपर ये बिल बनाया गया और फिर ये पारित किया गया है। सो ये तो इसके आई वुड से प्लसेस हैं, बट जो इसका क्रिटिसिज्म है वो भी हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं इसमें। एक तो ये है कि जब आप एक वोटर को अधिकार दे रहे हैं वोट करके सरकार चुनने का, तो फिर उसको RTI के अधिकार से क्यों वंचित किया गया है। अभी रिसेंटली पिछले महीने ये पार्लियामेंट में जवाब दिया गवर्नमेंट ने कि NRIs RTI एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, जबकि पहले ये प्रावधान था। 2013 में तो सरकार ने एक EIPO भी शुरू किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप एक IPO खरीद सकते थे और बाहर से ही इंफॉर्मेशन मांग सकते थे RTI के द्वारा सरकार के किसी भी गवर्नमेंट से, तो ये इन्होंने बंद कर दिया। सो पीपल आर सेइंग कि ये तो इस प्रिंसिपल के खिलाफ है कि एक तरफ तो आप वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं लेकिन सूचना का अधिकार उनसे वापस ले रहे हैं। दूसरी बात है ये अब इसका कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक तो ये कि प्रॉक्सी जिसको निर्धारित करेंगे उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, कि अब मेरा तो इसमें सुझाव ये था कि अब ये क्लियर नहीं है कि क्या फाइनली डिसाइड हुआ है, लेकिन ब्लड रिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए जिसको भी प्रॉक्सी दिखे, क्योंकि इसमें धांधलेबाजी की काफी स्कोप है। उनको पॉलिटिकल पार्टीज पकड़कर प्रेशराइज करेंगी जो लोकल यहाँ पे होंगे प्रॉक्सीज। दूसरा ये है इसमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज हैं, उनकी तो NRIs पर पहुंच नहीं है। जो रूलिंग पार्टी हैं या बड़ी नेशनल पार्टीज हैं उनके नेता तो जब बाहर जाते हैं तो वो NRIs से मिलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो क्या करेंगी। 3 करोड़ तो काफी बड़ा नंबर है, तो उसको एड्रेस उनके ये एक इसके ऊपर है।
जनरल वर्मा, आपने कई बातें बताई, एक आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसमें आपको कौन से जो इसमें अच्छी बातें हैं इस बिल में, क्या आप उन पर भी थोड़ा गौर डाल सकते हैं, क्योंकि जो NRIs हैं उनके लिए ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि NRIs वोट तो कर सकते थे लेकिन उनको वापस भारत जाके वोट करना पड़ता था, यू नो विच मे नॉट हैव बीन फीजिबल मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो थोड़ा सा बताएं
जी। वो तो डेफिनेटली इट इज अ बिग एडवांटेज फॉर द NRIs, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस, नोबडी विल स्पेंड हिज ओन मनी और वापस आके भारत में सिर्फ वोट करने के लिए आएगा, तो उस हिसाब से तो उनको बहुत फायदा है, बहुत सहूलियत है कि वहां से किसी को प्रॉक्सी कर सकते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि वो इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉक्सी जो डिटेल होता है वो ही आदमी या औरत वोट करे, ना कि कोई और। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये देखने की बात है, definitely for NRIs तो बहुत advantage की वो है।
जी, ये भी बताइए क्या कोई विशेष कारण है कि आपको आपके नजर में कि सरकार ने ये मेथड चुना है rather than something else, क्योंकि एक ये भी ई वोटिंग का भी एक जो है चर्चा में था,
वोटिंग का भी जो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन थी जो मैं बात कर रहा था एक्सपर्ट कमेटी की 2015 में, उसमें शायद उन्होंने ई वोटिंग का भी प्रपोजल दिया था, लेकिन वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है। और वो मैं भी समझता हूँ वाजिब है, बिकॉज ई वोटिंग में घपला हो सकता है. लेकिन उसी के साथ साथ ये भी है कि ये जो प्रॉक्सी वोटिंग में है उसमें भी घपला हो सकता है,
जी
तो उसको भी बहुत ध्यान से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है.
जी और ई वोटिंग में मेरे ख्याल से ये एस्टैब्लिश करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कौन लॉगिन करके
जी
कर रहा है
हाँ
वोट.
जी हाँ जी
जी जी बस ये पूछना चाहते हैं आपसे जनरल वर्मा कि आपके अनुसार एनआरआई कम्युनिटी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है भारत की, ये कितना महत्वपूर्ण है कि वो भी भारत की जो प्रक्रिया है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें पूर्ण रूप से शामिल हो. एनआरआईज जो है वो भी अपने जो ये मतदान का हक उन्हें मिला है, और अब प्रॉक्सी वोटिंग से शायद और आसान होगा कि वो जो अधिकार उन्हें है, वो राइट है, उसे एक्सरसाइज करें.
हाँ, मेरे हिसाब से अच्छी बात है और जरूरी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा भारतीय जिनके भी सिटीजनशिप है, चाहे वो एनआरआई हैं तो भी वो जुड़े रहें भारत की प्रक्रिया से. जो लोकतंत्र है उससे मजबूती होगा और वोटिंग जैसे मैंने बताया नंबर इंक्रीज होगा, वो अच्छी बात है.
आपने एक जिक्र किया था जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कि अच्छी बात है कि एनआरआईज के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स विद इन इंडिया है, जो अलग अलग प्रांतों से दूसरे दूसरे प्रांतों में जानते हैं, कि उनके लिए भी इस तरह का कुछ सरकार को अर्जेंसी से या तेज़ गति से करना चाहिए.
मेरा अपना जो सुझाव वो है ये कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में है माइग्रेंट वर्कर्स का. 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 139 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनका अभी तक इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं दिया है कि ये लोग कैसे वोट करें, क्योंकि जो गरीब लोग हैं स्पेशली जो छोटे काम के लिए इधर उधर जाते हैं अपना स्टेट छोड़कर, वो अपना पैसा खर्च करके वापस अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाके तो वोट करेगा नहीं. तो ऐसा कोई प्रावधान किया जा सकता कि जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं या जैसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो वहीं से अपना वोट डालें. इट कैन बी पोस्टल बैलेट या कोई भी जो वाजिब तरीका किया जा सकता है. तो उसके बारे में जब रविशंकर प्रसाद जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये वर्क इन प्रोग्रेस कब तक रहेगा? 139 मिलियन जो 2011 के सेंसस में था, अभी तो और भी बढ़ गया होगा मेरे हिसाब से. तो उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ कार्रवाई ज्यादा जरूरी है करने की.
जी जी जनरल वर्मा, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
वेलकम.
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए.